नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेम्स ब्लिक की पुस्तक द इन्फॉर्मेशन अ हिस्ट्री अ थ्योरी अ फ्लड लोकप्रिय विज्ञान विचारों के इतिहास और प्रौद्योगिकी के सांस्कृतिक अध्ययन को जोड़ती है। इसका विषय केवल कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं, बल्कि वह लंबी मानवीय प्रक्रिया है जिसमें लोग ज्ञान को संकेतों में बदलते, दूर तक भेजते, सुरक्षित रखते और व्यवस्थित करते आए हैं। ग्लिक अफ्रीकी बोलते ढोलों, वर्णमालाओं, शब्दकोशों, दूरसंचार प्रणालियों, मोर्स कोड और आधुनिक डिजिटल नेटवर्कों को एक ही बौद्धिक इतिहास में रखते हैं। पुस्तक का केंद्रीय बिंदु यह है कि सूचना आधुनिक युग की निर्णायक अवधारणा है, लेकिन सूचना का अस्तित्व डिजिटल युग से बहुत पहले का है। इसके मध्य भाग में क्लॉड शैनन की सूचना सिद्धांत को समझाया गया है, जिसने संदेश, शोर, कोडिंग और संचार की क्षमता को गणितीय रूप दिया। अंतिम भाग सूचना की अतिशयता, स्मृति, खोज और छंटाई की समकालीन समस्या पर विचार करता है। यह व्यापक पुस्तक तकनीकी विचारों को उनके मानवीय, ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों में देखने का प्रयत्न है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, संकेतों की प्राचीन दुनिया से सूचना युग तक का निरंतर इतिहास। ग्लिक की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह दिखाना है कि सूचना क्रांति कोई एक घटना नहीं है जो कंप्यूटर के साथ अचानक शुरू हुई। संचार की प्रत्येक बड़ी तकनीक ने इस प्रश्न को बदला कि मनुष्य किसी बात को कितनी दूर, कितनी तेजी से और कितनी विश्वसनीयता से पहुंचा सकता है। अफ्रीकी ढोल भाषाओं का उदाहरण बताता है कि संदेश केवल ध्वनि नहीं होता, उसका अर्थ साझा सांस्कृतिक नियमों से बनता है। वर्णमाला ने भाषा को सीमित संकेतों में बांधकर लेखन, प्रतिलिपि और संग्रहण को अधिक लचीला बनाया। शब्दकोशों ने शब्दों को क्रमबद्ध कर ज्ञान को खोजने योग्य बनाया। फ्रांसीसी ऑप्टिकल टेलीग्राफ और बाद की विद्युत प्रणालियों ने दूरी को संचार की मूल बाधा के बजाय इंजीनियरिंग की समस्या बना दिया। इस क्रम में पुस्तक तकनीक को अकेले उपकरणों की सूची की तरह नहीं देखती। हर माध्यम नई आदतें, नई संस्थाएं और ज्ञान के नए रूप पैदा करता है। लिखित अभिलेख स्मृति से अलग बाहरी स्मृति बनते हैं, जबकि तेज संचार निर्णय और समाचार की गति बदल देता है। इसलिए इतिहास का यह विस्तार पाठक को यह समझने में मदद करता है कि आज के डिजिटल माध्यम पुराने संचार प्रश्नों के नए उत्तर है। बिल्कुल अलग मानवीय परिस्थिति नहीं। दूसरा, मोर्स कोड और संपीड़न से संदेश की दक्षता का सिद्धांत। पुस्तक में मोर्स कोड केवल टेलीग्राफ के इतिहास का प्रसंग नहीं, बल्कि दक्ष संचार का ठोस उदाहरण है। किसी संदेश को भेजने में समय और संकेत दोनों लगते हैं, इसलिए बार बार आने वाले अक्षरों के लिए छोटे कोड उपयोगी होते हैं। यह विचार आगे चलकर संपीड़न की आधुनिक धारणा से जुड़ता है। ग्लिक ऐसे उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि संचार में अर्थपूर्ण संदेश को उसके भौतिक माध्यम से अलग करके भी देखा जा सकता है। तार पर विद्युत स्पंदन जाएं, रेडियो तरंगे जाएं या डिजिटल संकेत, मूल समस्या यह रहती है कि सीमित क्षमता वाले माध्यम पर पहचानने योग्य संकेत कैसे भेजे जाएं। कोडिंग की सफलता साझा नियमों पर निर्भर करती है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता को संकेतों का मानचित्र एक जैसा जानना चाहिए, अन्यथा संदेश शोर बन जाता है। इसलिए कोड केवल संक्षिप्त लिखावट नहीं, एक सामाजिक और तकनीकी समझौता भी है। पुस्तक का दृष्टिकोण यह भी स्पष्ट करता है कि तेज संचार अपने आप बेहतर समझ पैदा नहीं करता। संदेश की विश्वसनीयता, संदर्भ और सही व्याख्या उतने ही आवश्यक है। मोर्स कोड से डिजिटल संपीड़न तक की कड़ी दिखाकर ग्लिक सूचना को अमूर्त विचार और व्यावहारिक संचार समस्या दोनों रूपों में सामने रखते हैं। तीसरा, क्लॉड शैनन की सूचना सिद्धांत और अर्थ से अलग माप। पुस्तक का बौद्धिक केंद्र क्लॉड शैनन का सूचना सिद्धांत है। शैनन ने संचार को इस तरह परिभाषित किया कि संदेश के अर्थ का निर्णय किए बिना उसकी अनिश्चितता, संकेतों की मात्रा और चैनल की क्षमता का गणितीय अध्ययन किया जा सके, यही दूरी इस सिद्धांत को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। एक टेलीफोन लाइन, रेडियो प्रसारण या डिजिटल नेटवर्क के लिए इंजीनियर को पहले यह जानना होता है कि शोर के बीच कितनी सूचना भरोसेमंद ढंग से भेजी जा सकती है। शैनन का ब्रिड इस समस्या की बुनियादी इकाई बना, जिसमें दो संभावित अवस्थाओं के बीच चयन निहित है। ग्लिक सावधानी से यह अंतर उभारते हैं कि गणितीय सूचना और किसी संदेश का मानवीय महत्व एक ही चीज नहीं है। कोई तुच्छ अनपेक्षित संकेत सूचना सिद्धांत में अधिक सूचना रख सकता है, जबकि किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत अर्थपूर्ण वाक्य की माप संदर्भ पर निर्भर होगी। इस भेद को समझे बिना एंट्रोपी को अव्यवस्था या ज्ञान का साधारण पर्याय मान लेना भ्रामक होगा। पुस्तक शैनन के काम को संचार इंजीनियरिंग की उपलब्धि भर नहीं मानती। वह दिखाती है कि इसने भाषा, सांख्यिकी, कंप्यूटिंग और भौतिकी में सूचना के बारे में सोचने की भाषा बदल दी। चौथा, एंट्रोपी। यादृच्छिकता और मैक्सवेल के डेमन का वैचारिक संबंध ग्लिक सूचना सिद्धांत को ऊष्मागतिकी के एंट्रोपी विचार से जोड़ते हैं, लेकिन इसे सरल नारे में नहीं बदलते। एंट्रोपी का संबंध अनेक संभावित अवस्थाओं और अनिश्चितता से है। शैनन ने संचार में अनिश्चितता की माप के लिए इसी प्रकार की गणितीय संरचना का उपयोग किया। इससे यह समझने का रास्ता खुलता है कि सूचना किसी व्यवस्थित उत्तर का नाम मात्र नहीं, संभावनाओं में से चयन से भी जुड़ी है। यादृच्छिकता इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरी तरह अनुमानित संदेश नई सूचना बहुत कम देता है। दूसरी ओर, बिल्कुल अनियमित संकेत को समझना या उपयोग करना कठिन हो सकता है। पुस्तक इस तनाव को संचार, कोड और ज्ञान की समस्या के रूप में रखती है। मैक्सवेल के डेमन का प्रसिद्ध विचार प्रयोग भी इसी संदर्भ में आता है। वह ऐसा काल्पनिक प्राणी है जो अणुओं के बारे में जानकारी के आधार पर व्यवस्था पैदा करता प्रतीत होता है। बाद के विचारों ने दिखाया कि जानकारी को दर्ज करने, संसाधित करने और विशेषकर मिटाने की भौतिक लागत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्लिक इस संबंध से आधुनिक सूचना संसार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने लाते हैं। डेटा बनाना और सहेजना आसान लगता है, पर अनावश्यक सामग्री को चुनना, हटाना और व्यवस्थित करना श्रम, ऊर्जा और निर्णय मांगता है। अंत में विकिपीडिया, खोज और सूचना बाढ़ में चयन की समस्या, पुस्तक के अंतिम हिस्से में सूचना की प्रचुरता एक सामाजिक और बौद्धिक समस्या बनकर उभरती है। डिजिटल माध्यमों ने प्रकाशन और संग्रहण की लागत घटाई है, इसलिए अधिक लोग अधिक सामग्री बना और उपलब्ध करा सकते हैं। इसका लाभ ज्ञान तक व्यापक पहुंच है, पर इसके साथ यह प्रश्न आता है कि उपयोगी, विश्वसनीय और प्रासंगिक सामग्री कैसे खोजी जाए। ग्लिक विकिपीडिया को एक उभरती हुई विशाल सहयोगी ज्ञान संरचना के रूप में देखते हैं। वहां लेख जोड़ने, हटाने, सुधारने और बिगाड़ने की परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि खुली सूचना व्यवस्था को निरंतर संपादकीय निर्णय चाहिए। बोर्खेस की लाइब्रेरी ऑफ बेबल का संदर्भ इस स्थिति का प्रभावी रूपक है। यदि संभावित पाठ अनंत हो तो मूल्यवान पंक्ति ढूंढना स्वयं बड़ी चुनौती है। पुस्तक के अनुसार समस्या केवल सूचना की कमी नहीं, ध्यान और छंटाई की सीमित क्षमता भी है। खोज इंजन, वर्गीकरण और व्यक्तिगत फिल्टर उपयोगी है, लेकिन वे तटस्थ नहीं माने जा सकते। कौन सी सामग्री ऊपर आएगी, किन स्रोतों को विश्वसनीय समझा जाएगा और किन आवाजों को अनदेखा किया जाएगा, ये प्रश्न सूचना के नियंत्रण से जुड़े हैं। पुस्तक इस तनाव को पूरी नीति बहस के रूप में नहीं खोलती, फिर भी पाठक को सूचना तक पहुंच और सूचना को समझने के बीच के अंतर पर गंभीरता से सोचने को प्रेरित करती है। निष्कर्ष में, द इन्फॉर्मेशन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो विज्ञान, संचार, इतिहास, कंप्यूटिंग या आधुनिक मीडिया को अलग अलग विषयों के बजाय परस्पर जुड़ी हुई परंपराओं के रूप में समझना चाहते हैं। तकनीकी पृष्ठभूमि न रखने वाले पाठक भी इसके ऐतिहासिक उदाहरणों के सहारे बिट, कोड, शोर और एंट्रोपी जैसे विचारों तक पहुंच सकते हैं। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित पाठकों को शैनन तथा सूचना सिद्धांत के सांस्कृतिक संदर्भ और विचारों की वंशावली पर समृद्ध सामग्री मिलती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह पाठक को डिजिटल जीवन की सहज धारणाओं पर प्रश्न उठाना सिखाती है। अधिक डेटा का अर्थ अधिक ज्ञान नहीं होता, तेज संदेश का अर्थ बेहतर संवाद नहीं होता और खोजने योग्य सामग्री अपने आप विश्वसनीय नहीं बन जाती। इसका बौद्धिक लाभ और व्यापक है। यह अर्थ, संकेत, स्मृति, अनिश्चितता और भौतिक संसाधनों के संबंध को एक साथ देखने की क्षमता विकसित करती है। समान लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों की तुलना में ग्लिक की विशिष्टता उनका पैमाना है। वे केवल सूचना सिद्धांत की पाठ्यपुस्तकीय व्याख्या नहीं देते, न केवल इंटरनेट के प्रभावों पर टिप्पणी करते हैं। वे ढोल भाषा से लेकर विकिपीडिया तक एक लंबा इतिहास रचते हैं और वैज्ञानिक अवधारणाओं को मानवीय संचार की बदलती जरूरतों से जोड़ते हैं। अंतिम सूचना बाढ़ वाला भाग चयन और शक्ति के प्रश्नों पर सीमित लग सकता है, फिर भी समग्र पुस्तक सूचना को आधुनिक दुनिया की आधारभूत अवधारणा समझने के लिए असाधारण रूप से व्यापक प्रवेश द्वार है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेम्स क्लाइक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।